इसके पहले वाले ऑडियो में हमने तर्क किसे कहते हैं और तर्क भाषा की क्या व्युत्पत्ति होती है वो मैंने लिखाया था, फिर समय हो गया उसका तो हमने छोड़ दिया था। आज उसको हमें समझना है कि वो हमने क्या लिखाया आपको। तो पहला आपने लिखा होगा अभिज्ञात तत्वेर्थे कारणोपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम उहः तर्कः, माने तर्क किसे कहते हैं। तो अभिज्ञात तत्वे अर्थे, माने जिस अर्थ का तत्व जो है ज्ञात नहीं है। विज्ञात माने वही ज्ञात होना, माने जिसका ज्ञान हो गया वह ज्ञात है, जिसका विशेष रूप से ज्ञान हुआ उसको हम कहेंगे विज्ञात, और अविज्ञात माने जिसका विशेष रूप से ज्ञान नहीं है वह हो गया अविज्ञात तत्व। माने जिस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है ऐसा जो तत्व है उसको कहते हैं अविज्ञात तत्व। तो अविज्ञात तत्व वाले अर्थ में या अर्थ के लिए, माने जिस अर्थ के तत्व का ज्ञान मुझे नहीं है ऐसे अर्थ के लिए कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम उहः तर्कः। ये कारणोपपत्तितः, तः जो है ना ये तसील प्रत्यय होता है व्याकरण में, उसका अर्थ होता है से। अब जैसे ग्रामतः आगच्छति, माने ग्राम से आता है, तो ग्रामतः विद्यालय, तः विद्यालय से, गृहात गृहात को कहेंगे गृहतः। तो यहाँ भी कारणोपपत्ति तः, इसमें एक तो कारण शब्द है, दूसरा उपपत्ति शब्द है, और उसमें तसील प्रत्यय लगा हुआ है, तो तसील का ही तः बन गया है। तो कारणोपपत्ति तः माने कारणोपपत्ति से, कारणोपपत्ति के द्वारा। ये कारणोपपत्ति क्या है, तो इसको अगर हम एक शब्द में समझना चाहें तो कह लें कि प्रमाण के द्वारा। तो कारणोपपत्तितः मतलब प्रमाण के द्वारा। फिर तत्व ज्ञानार्थम माने तत्व ज्ञान के लिए, उहः, उहः माने विचारः, तत्व ज्ञान के लिए जो विचार होता है उसी को कहते हैं तर्कः। फिर से समझ लीजिए, जिस अर्थ का अर्थ ना यहाँ पर वो मीनिंग वाला अर्थ नहीं लेना है, कहते हैं इसका मीनिंग ये है, वो अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब हो गया 16 पदार्थ। वह 16 पदार्थ क्या है आपने याद भी किया होगा और आगे आने वाला है। तो वह जो 16 पदार्थ है और उसका उसके तत्व का जो ज्ञान नहीं है, तो ऐसे अर्थ के में अर्थ के लिए, या जो 16 पदार्थ के तत्व का ज्ञान नहीं होने पर जो उनके ज्ञान के लिए प्रमाण के द्वारा विचार किया जाता है उस विचार का नाम ही तर्क है। अविज्ञात तत्वे अर्थे माने जिस अर्थ के तत्व का ज्ञान नहीं है, जो अर्थ अविज्ञात तत्व है उस अर्थ के ज्ञान के लिए प्रमाण के द्वारा कारणोपपत्तितः, प्रमाण के द्वारा जो उहः माने विचार किया जाता है उसी का नाम तर्क है। तो एक तरह से तर्क का मतलब समझ लीजिए आप विचार। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे कि तात्विक ज्ञान हो। किसका तात्विक ज्ञान हो? तो ये प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन ये जो पदार्थ है ना, इसका तात्विक ज्ञान हो। किसके द्वारा ज्ञान होगा, किसके द्वारा आप विचार करेंगे? तो कारणोपपत्तितः माने प्रमाण के द्वारा। ऐसे कारण उपपत्ति में एक एक शब्द का अगर अर्थ समझे तो कारण होता है कि जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसको हम कारण कहते हैं। जैसे घड़ा जो बनता है उसका कारण होती है मिट्टी, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, तो घड़ा का कारण हो गया मिट्टी। तो कारण कहते हैं जिसमें कार्य उत्पन्न हो या जिससे कार्य उत्पन्न हो उसको कारण कहेंगे। और उपपत्ति मतलब होता है युक्ति। युक्ति के बारे में मैंने बताया भी था, फिर से याद दिलाता हूँ कि जिसके द्वारा किसी को सही ठहराया जाए या गलत ठहराया जाए उसकी को कहते हैं उपपत्ति अथवा युक्ति। तो कारण उपपत्ति तह माने कारण उपपत्ति के द्वारा। इसको एक शब्द में सिखाने के लिए मैं बताया था कि प्रमाण के द्वारा। तो ऐसा अर्थ जो कि अविज्ञात तत्व है, मान जिसके जिस अर्थ के तत्व का ज्ञान हमें नहीं है, तत्व ज्ञानार्थम उसके ज्ञान के लिए कारणोपपत्तितः उह माने प्रमाण के द्वारा जो ऊ है विचार है उसी विचार को तर्क कहा जाता है। और कारण का अर्थ बता भी दिया मैंने अलग से, कारण का मतलब जिसमें कार्य उत्पन्न हो या जिससे कार्य उत्पन्न हो, उपपत्ति मतलब युक्ति, और कारणोपपत्तितः का एक शब्द में अर्थ करने के लिए प्रमाण के द्वारा। अब जो दूसरा हमने लिखाया था वो तर्क भाषा शब्द की व्युत्पत्ति थी, ये सब भी परीक्षा में पूछता है, इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं ना उसको मैं संस्कृत में कहता हूँ कि लिख लीजिए आप लोग। इसमें तर्क भाषा शब्द का अर्थ पूरे का अर्थ बताया है, तर्क्यन्ते बराबर प्रतिपाद्यन्ते, ये बराबर का जो है ना वो इसलिए मैंने बताया कि तर्क्यन्ते का अर्थ है प्रतिपाद्यन्ते, ये बात अब समझ जाए इसलिए बराबर का हमने कहा चिन्ह डालने के लिए। तो तर्क्यन्ते माने प्रतिपाद्यन्ते, प्रतिपाद्यन्ते मतलब प्रतिपादन किया जाता है, कथन किया जाता है, बताया जाता है। तो तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, तर्काः का मतलब हो गया कि जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे हम तर्क कहते हैं। अब प्रश्न होगा कि वो किसका प्रतिपादन किया जाता है, वो तर्क कौन है, तो प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः, तो प्रमाण प्रमेय संशय वाला जो है ये जो 16 पदार्थ हैं उसी का नाम यहाँ पर है तर्क। और भाष्यन्ते भाष्यन्ते अनया, वे 16 पदार्थ अनया, अनया का अर्थ यहाँ पर पुस्तक कर लीजिए कि इस जिस पुस्तक के द्वारा वो 16 पदार्थ भाष्यन्ते, भाष्यन्ते माने कथ्यन्ते, वो 16 पदार्थ जिस पुस्तक के द्वारा बताया जाए उसी पुस्तक का नाम है तर्क, इति तर्क भाषा। तो तर्क भाषा में दो शब्द है ना, एक है तर्क दूसरा है भाषा। तो तर्क शब्द की व्युत्पत्ति इन्होंने की, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः, ठीक है, यह है तर्क शब्द की व्युत्पत्ति, माने माने जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे हम तर्क कहते हैं। प्रश्न होगा कि किसका प्रतिपादन किया गया है, तो प्रमाण आदयः 16 पदार्थाः, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उसका यहाँ पर प्रतिपादन किया है। तो पुस्तक में जो तर्क भाषा शब्द है ना उसमें तर्क भाषा में जो तर्क शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर आप देखिए गौर करके, तो 16 पदार्थ को ही जो है ना तर्क का अर्थ बताया गया, तर्क मतलब 16 पदार्थ। और भाषा का की व्युत्पत्ति इन्होंने बताई, ते भाष्यन्ते अनया, ते मतलब वे 16 पदार्थ जिस पुस्तक के द्वारा भाष्यन्ते कथ्यन्ते, ये 16 पदार्थ जिस पुस्तक के द्वारा बतावे जाएं कहे जाएं समझाए जाएं उसे हम कहते हैं भाषा। तो भाषा का अर्थ यहाँ पर जो है ना बताने वाली पुस्तक कर लीजिए, चाहे सीधे बताने वाली भी कर सकते हैं। तो तर्क का अर्थ मतलब यहाँ हो गया पुस्तक के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो तर्क का मैंने व्युत्पत्ति पहले बता दिया, और अभिज्ञात तत्व अर्थे तत्व, अभिज्ञात तत्व अर्थे भी बोल सकते हैं और अभिज्ञात तत्व अर्थे भी बोल सकते हैं। तो अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क, परीक्षा में अगर पूछे ना कि किंग नाम तर्क, तर्क किसे कहते हैं, तो यही लाइन आपको लिखनी होगी। अगर पूछे कि तर्क भाषा में जो तर्क शब्द है उसका क्या मतलब है, तो आपको लिखना होगा प्रमाण आदि 16 पदार्थ, प्रमाण आदयः 16 पदार्थाः तर्काः, ठीक है ना। और भाषा का अर्थ पूछे तर्क भाषा में भाषा शब्द का क्या अर्थ है, तो संस्कृत में लिखना हो तो वही भाष्यन्ते अनया इति भाषा, और हिंदी में समझना हो तो भाषा का अर्थ हो गया कि जिसके द्वारा बताया जावे उसे हम भाषा कहते हैं। और तर्क भाषा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जाए तो पूरा लिखना है तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः 16 पदार्थाः ते भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा। समझने के लिए ये समझिए कि 16 प्रकार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को बताने वाली जो पुस्तक है उसी पुस्तक का नाम है तर्क भाषा। इस तरह से आपने तर्क भाषा पुस्तक के बारे में, उसकी व्युत्पत्ति के बारे में ये सब जाना। एक और प्रश्न यहाँ पर जो है ना परीक्षा में पूछा जाता है, उसको इसी टाइम नोट कर लिए क्योंकि फिर बाद में जो है ना आपको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ये पूछा जाता है कि ये तर्क भाषा किस टाइप का ग्रंथ है, किस प्रकार का यह ग्रंथ है, तो इसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, तर्क भाषा एक प्रकरण ग्रंथ है, तर्क भाषा एक प्रकरण ग्रंथ है। तो दो नंबर में आता है ये प्रश्न कि तर्क भाषा कीदृश ग्रंथ है, तो उत्तर होगा प्रकरण ग्रंथ है। अब मन में आपको हो रहा होगा प्रश्न कि ये प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, तो ऐसा है कि जैसे ये न्याय दर्शन का ग्रंथ है ना, तो न्याय दर्शन में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो जिसमें बहुत सारी बातें नहीं बता करके कुछ बातों को बताया गया हो ना, ऐसे ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, जो दर्शन से रिलेटेड सारी बातों को नहीं बता करके उसके आंशिक बातों को भी बतावे उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि दो चीजें मुख्य हैं दर्शन में, एक है प्रमाण और एक है प्रमेय। तो इस ग्रंथ में ना प्रमेय के बारे में ज्यादा फोकस किया गया, प्रमेय को ज्यादा बताया गया और प्रमाण के बारे में उतना विचार इसमें नहीं किया गया। तो मान लीजिए दो ही चीजें अगर हैं, ऐसे और भी चीजें होती हैं लेकिन प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत कहिए तो सब कुछ समाहित हो सकता है अगर उस तरह से व्याख्या करें। तो यहाँ पर प्रमाण के बारे में थोड़े में ही बताया गया है और प्रमेय के बारे में ज्यादा विस्तार से बताया गया है और न्याय दर्शन के सारे सिद्धांतों को इसमें नहीं बताया गया है, इसलिए इस ग्रंथ को हम प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो अभी इसी समय में आपने जान लिया कि यह तर्क भाषा किस टाइप का ग्रंथ है, किस प्रकार का है, तो प्रकरण ग्रंथ है। इस तरह से अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है और समझा है। इस तर्क भाषा के रचयिता कौन है, उनके बारे में सामान्य जो उपलब्ध परिचय है उस परिचय को आपने समझा। फिर दर्शन कितने प्रकार का है, आस्तिक दर्शन कौन कौन है आपने वो समझा, न्याय किसे कहते हैं वो आपने लिखा भी था, समझा भी था, दर्शन किसे कहते हैं ये समझा। फिर तर्क भाषा में तर्क क्या है, भाषा क्या है, तर्क भाषा क्या है, फिर जो है आपने मंगलाचरण भी पढ़ा, उसमें अनुबंध चतुष्टय को समझा कि विषय अधिकारी संबंध प्रयोजन को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं और इस पुस्तक में अनुबंध चतुष्टय क्या है उसको भी आपने समझा। तो अभी तक इतनी सारी बातों को जो है आप समझ चुके हैं और लास्ट में अभी हमने समझाया ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह प्रकरण ग्रंथ है, ये भी यहाँ तक हो गया। अब हम चलेंगे पुस्तक के अंदर, प्रवेश करेंगे, विषय को समझेंगे। देखिए मैं कोशिश तो करता हूँ कि आप लोगों के स्टैंडर्ड में आकर के और शनै शनै धीरे धीरे जो है आपको मैं बताऊँ, आपको सिखाऊँ, आपको समझाऊँ। जहाँ लिखने वाली कोई इस तरह की बात है उसको मैं लिखाऊँ और बार बार बोल करके लिखाऊँ ताकि आप उसको लिख सकें। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि ये ऑनलाइन माध्यम से जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उसको मैं आपको कराऊँ। तो मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी अपनी ओर से जो है उसी तरह से कोशिश करनी है। बेटा ये कोरोना का काल है, इसमें हमें भी थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी है और आपको भी जो है ना थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी है। थोड़ा याद आपको करना ही पड़ेगा, समय से पढ़ना ही पड़ेगा, उसको समझना ही होगा और जो डाउट हो उसको ज़रूर आप जो है मैसेज करके ग्रुप में आप लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम ये शुरू करते हैं। आपने इसको तो याद कर लिया होगा अभी तक, मुझे उम्मीद है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगम। मैं भूमिका के क्रम में बताया था आपको कि जो जितने भी दर्शन है ना उसमें क्या होता है कि पहले सूत्र होता है, उसके बाद वार्तिक होता है, उसके बाद भाष्य होता है और जो सूत्र बनाने वाले होते हैं उनको प्रवर्तक कहा जाता है। तो न्याय दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं महर्षि गौतम, ये भी मैंने शायद बताया था आपको। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन के सूत्रों की रचना की थी, उन सूत्रों का यह पहला सूत्र है, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं जिसका ये पहला सूत्र है। और इस सूत्र के में क्या किया है इन्होंने, आप एक एक करके अगर गिनती करेंगे, मैंने एक एक करके ही पढ़ा है, पूरा मिला करके नहीं पढ़ा। प्रमाण एक हो गया, प्रमेय दो हो गया, संशय तीन हो गया, इस तरह से जब गिनती करेंगे तो ये 16 होंगे। और इन्हीं 16 को 16 पदार्थ कहा गया। देखिए, एक न्याय दर्शन, एक वैशेषिक दर्शन है, तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं और वैशेषिक दर्शन में जो है ना वो 7 पदार्थ माने गए हैं। तो हमें अभी न्याय दर्शन के बारे में पढ़ना है ना, इसलिए वो 7 पदार्थ भी कहीं कहीं आता है। उस 7 पदार्थ को हम इसी 16 पदार्थ के अंतर्गत उसको हम समाहित कर लेते हैं, अंतर्भावित कर लेते हैं। तो ये जो परीक्षा में पूछे कि नहीं ये 16 पदार्थ कौन है, तो यही आपको लिखना होगा। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। तो देखिए, तो ये 16 हुए कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये निग्रह पर आकर के 16 पूरा हो जाता है ना। तो ये जो 16 पदार्थ हैं, इसके तत्व का अगर ज्ञान हो जाए, तत्व मतलब वास्तविकता, जैसे प्रमाण, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, संशय क्या है, इसका अगर पूरी तरह से तात्विक ज्ञान हो जाए तो निःश्रेयस अधिगमः। यह महर्षि गौतम का पहला सूत्र है कि मैंने बताया था ना आपको कि इस दर्शन का प्रयोजन क्या है, तो मोक्ष प्रयोजन है। तो मोक्ष का एक पर्यायवाची शब्द जो है ना, वह निःश्रेयस भी होता है। निःश्रेयस और मोक्ष एक ही चीज है। और अधिगमः माने प्राप्ति, तो निःश्रेयस अधिगमः माने मोक्ष प्राप्ति। तो न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, तो तत्व ज्ञानात निःश्रेयस अधिगमः, तत्व के ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम होता है, माने मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसके तत्व ज्ञान से, तो वो प्रमाण, प्रमेय, संशय, पूजन, ये जो 16 पदार्थ है, इसके तत्व ज्ञान अगर हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा इस प्रथम सूत्र में बताया गया है। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो ये कि 16 पदार्थ कौन है, तो आपको गिनाना होगा प्रमाण प्रमेय करके। दूसरा कि मोक्ष प्राप्ति कैसी होती है या निःश्रेयस अधिगम कैसे होता है, तो भी आपको ये पूरा सूत्र लिखना होगा, तत्व प्रमाण प्रमेय लिख करके लास्ट में तत्व ज्ञान निःश्रेयस अधिगम। हाँ, वही कहा कि इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम, ये न्याय दर्शन का आदिम सूत्र है। आदिम सूत्र है मतलब पहला सूत्र है। अस्य अर्थः, इसका अर्थ इन्होंने बताया, ऐसे मैंने तो बताया ही था कि प्रमाण आदि 16 पदार्थानां तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति भवति। ये प्रमाण प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ हैं, इनके तत्वज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है वो अगले ऑडियो में आपको मैं सिखाऊंगा, आज यहीं तक रखते हैं।